मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाए, कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भृकुट बीच दरबार अपना सजाए।
ओम शांति। आज का हमारा विषय है प्रकृति जीत और इंद्रिय जीत। हम सब बाबा के बच्चे, ज्ञानी बच्चे हैं और ज्ञानी के जीवन का एक लक्ष्य होता है। लक्ष्य क्या? परम लक्ष्य होता है। लक्ष्य तो साधारण लोगों के जीवन का भी होता है, लेकिन हमारे जीवन का जो लक्ष्य है उसको हम परम लक्ष्य कह सकते हैं। और वो परम लक्ष्य क्या है? जितनी ऊंची पढ़ाई है तो लक्ष्य भी इतना ही ऊंचा होगा। तो वो परम लक्ष्य है कि हम इंद्रिय जीत बने, प्रकृति जीत बने, देहातीत बने और लास्ट में फिर कर्मातीत बने। इतने ऊंचे लक्ष्य को सामने रख करके हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। इंद्रिय जीत का मतलब क्या हुआ? अपनी सर्व इंद्रियां भगवान को अर्पित कर देना। जैसे हम शास्त्रों में गायन सुनते हैं, कोई राजा इंद्र है, स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान रहता है, कहानी सुनते हैं ना, तो ये राजा इंद्र कौन है? इंद्र वही है जिसने इंद्रियों को जीता, जो इंद्रियातीत बना। इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा का भी एक नाम इंद्र है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ही तो वास्तव में स्वर्ग के सिंहासन पर आरूढ़ होने वाले हैं। सच्चे इंद्र तो वही है। और हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं, हमको भी स्वर्ग में जाना है। तो स्वर्ग में जाने वालों की विशेषता क्या होगी? वो प्रकृति जीत भी होंगे और इंद्रिय जीत भी होंगे। अगर ऐसे नहीं होंगे तो स्वर्ग में प्रवेश का सर्टिफिकेट ही नहीं मिलेगा, पासपोर्ट ही नहीं मिलेगा। तो ये पढ़ाई के दोनों इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अब इंद्रिय जीत बनने से पहले हमको बनना है देह से अतीत। बाबा रोज मुरली में हमको देह से न्यारा होने की भिन्न भिन्न युक्तियां सुनाते हैं, प्रेरणा देते हैं, स्मृति दिलाते हैं, अपना अनुभव सुनाते हैं। देह से न्यारे होने पर क्या क्या प्राप्तियां होती हैं वो बात बताते हैं। एक मुरली में तो बाबा ने कहा था, बच्चे अलग अलग गुण धारण करने की आवश्यकता ही नहीं है। जो आत्माभिमानी स्थिति में रहता है उसमें सारे गुण अपने आप प्रकट हो जाते हैं। कोई पुरुषार्थ बाकी उसको करना ही नहीं है। इस एक पुरुषार्थ में सर्व गुण, शक्तियां, स्वभाव, संस्कार, सारे सब्जेक्ट क्लियर करने की शक्ति है। और उसके लिए बाबा भिन्न भिन्न युक्तियां भी बताते हैं। तो देहातीत का अर्थ क्या है? देह से अतीत, देह से परे, देह में उलझा हुआ नहीं, लेकिन देह को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह से यूज करने वाला। जैसे एक ड्राइवर है, वो अपने स्टेयरिंग को पकड़ करके उसे चलाता है, तो वो जब चाहे उस पे चढ़ जाए और जब चाहे उतर जाए। गाड़ी उसको बांध के तो नहीं रखती। तो ऐसे ही हम विचार करें, चिंतन करें, ये संपूर्ण शरीर हमारी गाड़ी है, लेकिन इसकी जो स्टेयरिंग की सीट है वो कौन सी है? भ्रुकुटी है, जहां बैठ के हमने अपना स्टेयरिंग संभाला हुआ है। हम सब बैठे हैं ना अपने अपने सिंहासन पे, यहां बैठ करके हम इसको लीड कर रहे हैं। सारे जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं सब हमारे हाथ में हैं। तो जितनी देर जरूरत पड़ी हमने इसको ऑपरेट किया, और जब जरूरत नहीं पड़ी तो इस सिंहासन को छोड़ दिया, फिर कहां गए? जैसे आपने देखा होगा कई लोगों की शॉप घर के सामने घर के बाहर होती है, जब चाहते हैं शॉप में जाके बैठते हैं, जब चाहते हैं घर में आकर के आराम कर लेते हैं। कईयों के ऑफिस भी ऐसे ही होते हैं, सामने ऑफिस है पीछे घर है, ऑफिस में बैठे लेन देन फाइल चेक ये वो किया, दो घंटे काम किया, उसके बाद आकर के घर में रेस्ट किया। तो इसी तरह से ये हमारा ऑफिस है, आत्मा का ये ऑफिस है, इस ऑफिस में आकर के वो बैठती है। अनेक प्रकार के कर्म उसको करने हैं, कभी आंख के द्वारा करती है, कभी कान के द्वारा, मुख के द्वारा, और कई बार दो तीन इंद्रियों के द्वारा इकट्ठा भी एक साथ करती है, ऑपरेट करती है, इसको काम करती है। लेकिन जब काम पूरा हो गया तो उसका घर कितनी दूर है? एक कहावत है, कहती है घोड़ों को घर कितनी दूर। तो इस कहावत का मतलब ये है कि घोड़ों के लिए घर दूर नहीं होता, उनकी छलांग इतनी तेज होती है, चाल इतनी तेज होती है कि वो तो पलक झपकते ही घर में पहुंच जाते हैं। तो इस आत्मा के लिए, मुझ राजा के लिए घर कितनी दूर? घोड़े के लिए तो फिर भी घर बहुत दूर, लेकिन आत्मा के लिए घर कितनी दूर? सेकंड का ही खेल है ना। तो जब चाहा ऑफिस में आके बैठा, ऑपरेट किया, और जब चाहा ऑफिस को बंद किया और घर गया, फिर वापस आया सिंहासन पे बैठा, उसके बाद गया। तो ये अभ्यास हमको देह से अतीत बनाता है, देहातीत। देह में अटैचमेंट नहीं है, आसक्ति नहीं है, आकर्षण नहीं है, देह की कोई चीज बांधती नहीं है, कुछ देखने का सुनने का शौक नहीं है। हाँ, निमित्त मात्र इसको ऑपरेट करना है, ऑपरेट किया और गया। दूसरा, बाबा कहते हैं बच्चे दो जगह हैं आपके जाने की, एक आप अपने घर में जाओ और रेस्ट के लिए, दूसरा आप अपनी राजधानी का भी चक्र लगाओ। तो जैसे हम कंपैरिजन करते हैं, ये जो मेरा ऑफिस है, जैसे किसी का नया ऑफिस बनता है, नया घर बनता है, बाबा मुरली में कहते हैं जब पिता नया घर बना देता है तो बच्चा बार बार संकल्प करता है, मैं नए घर में कब जाऊंगा, नए घर में कब जाऊंगा। तो हमारे लिए भी हमारा पिता नई दुनिया बना रहा है, वो हमारा नया घर है। तो जैसे आत्मा को है कि स्वर्ग आया और मैं उसमें जाऊं, है ये पुरानी दुनिया, पुराना शरीर, ये सब तो जैसे अब खलास होना है, तो आंखों में जैसे बाबा कहते हैं ना, नई दुनिया के नजारे। तो ये पुराना घर है आत्मा का, तत्व पुराने हो गए हैं, 5000 साल पुराना ये मकान है, तत्व तो 5000 साल पुराने है ना, अपन भले इसमें अभी आके बैठे हैं लेकिन तत्व पुराने हैं। तो इस पुराने घर में आत्मा बैठी हुई है और उसका नया घर बनने के प्रोसेस में है, नया शरीर तैयार हो रहा है। जैसे ब्रह्मा बाबा कहते थे कि बच्चे आज ये बूढ़ा है शरीर है और कल देखो मिचनू बनूंगा जा करके। तो दोनों का कंपैरिजन जैसे हमारे सामने आता है, ये पुराना शरीर है, पुराने तत्वों से बना हुआ है, जर्जरी भूत शरीर है तो बहुत कीमती, क्योंकि इसी में बैठ के तो बाबा पुरुषार्थ करवा रहा, और इसकी भेंट में पुराने घर में बैठ के पुरुषार्थ किया, और इसकी भेंट में नया बहुत सुंदर तेजस्वी, जिसको रोग ना आए, शोक ना आए, बुढ़ापा ना आए, मृत्यु ना आए, काल मृत्यु ना आए, ऐसा जैसे मेरा घर बन करके तैयार हो रहा है, मेरा ऑफिस जैसे ऐसा बन के तैयार हो रहा है। तो आज मैं आत्मा इस पुराने ऑफिस में हूं और कल मैं आत्मा उस नए में गई की गई। और आप उड़ के तो अभी भी जा सकते हैं, छोड़ के इसको ऑफिस को, और आप उसमें जाके बैठिए, अपना देवता इस स्वरूप इमर्ज करके उसकी भ्रकुटी में बैठिए और उन आंखों से देखिए कितना मजा आता है। कल्पना में लोग जाते हैं ना, नया घर बनने से पहले ही नए घर में चले जाते हैं, उसकी खिड़की से झांकूंगा तो कितना मजा आएगा, उसके दाएं ग्रीनरी है, बाएं भी ग्रीनरी है, उसके सामने बहुत सुंदर नदी है, लोग अपने नए घर की कल्पना करते हैं। तो हमारा नया घर कैसा होगा, नया ऑफिस कैसा होगा, नई गाड़ी जो हमको मिलने वाली है वो कैसी होगी, उसमें बैठ के आत्मा को कितना मजा आएगा, ना कभी खांसी आएगी, ना कभी जुकाम होगा, ना कभी थकान होगी, है ना, उसको चलाने में ऑपरेट करने में कोई प्रॉब्लम आएगी, कितनी बढ़िया फर्राटे से चलने वाली वो गाड़ी होगी, कितना बढ़िया होगा, उसकी आंखों से झांक के देखेंगे कितना मजा आएगा, उसके चारों ओर कितना प्रकाश होगा, आत्मा कितना हल्की होकर के उसको ऑपरेट करेगी। तो बस मुझे वो नया मिला कि मिला और ये मेरा पुराना गया कि गया। तो उसमें भी एक सेकंड में इस पुराने में और एक सेकंड में उस नए में हम ये भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। परम धाम में अगर न भी जाना हो तो सतयुग तो इसी दुनिया में होगा, हमारा नया रूप तो इसी दुनिया में होगा। तो जैसे सेकंड में मैं पुरानी दुनिया में हूं और सेकंड में भी मैं नई दुनिया में स्वर्ग के नजारे देख रहा हूं। तो ये अभ्यास बार बार होगा, बार बार करना पड़ेगा और बाबा कहते हैं दीर्घ काल का चाहिए, अल्प काल का नहीं चाहिए, दो चार बार किया और हमारी वो स्थिति बन जाए, नहीं, बहुत लंबे काल का चाहिए। आपने देखा होगा कि जो लंबे समय से गाड़ी चलाते हैं ना लोग, वो कितने एक्सपर्ट हो जाते हैं, बातें भी करते रहेंगे, हैं, कुछ खा भी लेंगे, लेकिन स्टेयरिंग संभाल के रखे कि एक उंगली से भी संभाल लेंगे। और जो नया नया होता है ना, वो दोनों हाथों से कस के पकड़ेगा, फिर भी हिलती रहेगी गाड़ी। तो अगर हमारा अभ्यास थोड़ा होगा तो ये स्थिति नहीं बनेगी, बुद्धि हिल जाएगी। अभी सतयुग में जा रहे थे, बीच में ही वापस लौट आए, परम धाम जा रहे थे, बीच में ही लौट आए, क्योंकि कम अभ्यास किया है, कम प्रैक्टिस की। लेकिन लॉन्ग काल का, बाबा कहते हैं दीर्घ काल का, लंबे समय का भी हिसाब होता है। तो करते जाए, लंबे समय में भी दो बातें, एक होता है कि हम ज्ञान में बहुत लंबे समय से हैं, 20 साल से मैं अभ्यास कर रहा हूं, नहीं, एक होता है कि ज्ञान में तो भले मैं 5 साल से ही हूं, लेकिन मैंने 24 घंटे में समझो 16-17 घंटा अभ्यास किया, एक ये भी लंबा काल है। एक है कि ज्ञान में मैं 20 साल से हूं लेकिन मैंने एक दिन में 1-2 घंटा भी ठीक से अभ्यास नहीं किया। तो लंबे काल का मतलब लंबे समय ज्ञान में चलने से नहीं है, लेकिन मैंने कितना समय किया। जैसे पायलट होते हैं ना जो प्लेन उड़ाते हैं, तो उनका अनुभव कैसे काउंट किया जाता है मालूम है ना, कितने घंटे प्लेन उड़ाया। पायलट कितने साल से हैं दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, पायलट तो वो मान लो 25 साल से है लेकिन उसने एक दिन में केवल छोटा रन 2 घंटे ही प्लेन उड़ाया। लेकिन एक है जो केवल अभी 5 साल से ही बना है लेकिन उसने एक दिन में 8-10 घंटा प्लेन उड़ाया, तो 5 साल वाले के मार्क्स अधिक होते हैं। तो हमारी काउंटिंग भी ऐसी होती है कि हमने कितनी देर ये आने जाने की प्रैक्टिस की एक दिन में, ये प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। हमने कितने घंटे ज्ञान सुना, कितना लिखा, कितना वर्णन किया, वो नहीं, वो तो फिर भी देह है कि स्मृति में होते हुए वो कर्म हो जाएंगे, लेकिन ये अभ्यास ये आपको देह से न्यारा हुए बिना आप कर ही नहीं सकते, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और जो ये अभ्यास करता है ना उसके संस्कार बदलते हैं, वो हल्का बनता है, उसमें परिवर्तन आता है, उसकी उसकी जैसे पूरे पूरे कर्ज जैसे उतरते जाते हैं, कर्मों के जो डेट हैं, ऋण हैं, वो जैसे उतरते जाते हैं, तो वो अपने लक्ष्य की तरफ बहुत तीव्र गति से बढ़ता है। रात को भी आंख खुल गई तो अभ्यास में लगा हुआ है, दिन में भी टाइम मिल गया तो अभ्यास में लगा हुआ है, ये मेरा देवता ही रूप है, ये मेरा साधारण रूप है, बस मैं गया के गया, उसे नेचुरल लगने लगता है धीरे धीरे, जैसे ये मेरा ये रूप है, ये मेरा ये रूप है, दोनों ही नेचुरल है, आज मैं इसमें हूं कल मैं इसमें होऊंगा, मेहनत नहीं लगेगी। तो ऐसा हमको नेचुरल लगे, ये मेरा घर है, अभी अभी मैं यहाँ हूं, अभी अभी वो गया, वही तो मेरा घर है, वो लाल लाइट, लाल लाइट में मेरा वो बिंदु रूप, शिव बाबा का सामीप्य, शिव बाबा से जैसे प्यार भरी किरणें, शक्ति भरी किरणें, जब चाहूं तभी मुझे बाबा से मिलती रहती, तो नेचुरल हो गया है अभ्यास। तो ये अभ्यास बार बार जब करेंगे तब हम देहातीत बनेंगे, देह को कंट्रोल करना आएगा, देह के मालिकता की भावना आएगी, देह पर मास्टरी हो जाएगी। मैं जब जैसे बाबा ने कहा ना, मेरा कहते हो तो मेरा बाबा याद आए, और जब मैं कहते हो तो कोई ना कोई स्वमान याद आए, मैं दिल तक नशीन आत्मा हूं, या मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, या मैं देवात्मा हूं। तो जब ये अभ्यास होता है ना, तो जब मन में से मैं शब्द निकलता है ना, तो एक दृश्य दिखाई देता है, जैसे मैं राजा हूं, भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूं, और जैसे ये सब मेरे नौकर चाकर, ये दृश्य इमर्ज होता है। जैसे बाबा कहती हैं कि ज्ञान को स्वरूप में लाओ, तो स्वरूप में लाने का अर्थ यही है कि वैसा दृश्य इमर्ज हो। तीसरी बात, देहा तीत भी बनने के लिए दो बातें और चाहिए। कई भाई बहन कहती हैं कि भाई जब हम कर्म करती हैं तो कर्म में थोड़ा बहुत तो कुछ होता ही है, लेकिन बाबा ने एक मुरली में कहा था कि आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत ऊंची पढ़ाई है। आज भी मुरली में कहा, साकार मुरली में, बहुत ऊंची पढ़ाई है, पढ़ाने वाला भी ऊंचा है, पढ़ाई भी ऊंची है, पद भी ऊंचा है। तो बाबा ने कहा था कि ये पढ़ाई तो पढ़नी ही साकार शरीर में है, और पढ़नी भी कर्म करते हुए है। परम धाम में जाके तो नहीं पढ़ेंगे, और अगर परम धाम में जाके पढ़ें तो क्या नंबर लगेंगे, सारे ही एक जैसे बैठे हुए हैं। लेकिन कर्म करते हुए जो ये अवस्था बनाएगा उसको नंबर मिलेंगे, यही तो प्रैक्टिस है, नहीं तो प्रैक्टिस क्या है, फिर तो कोई मेहनत ही नहीं है। लिखना हमको नहीं, पढ़ना हमको नहीं, बच्चों की तरह कोई एक्सपेरिमेंट हमको करना नहीं, दुनिया के बच्चों की कितनी पढ़ाई में मेहनत होती है, एक ही मेहनत है सारी, अपने आप के ऊपर, अपने मन के ऊपर, अपने विचारों के ऊपर, अपनी एकाग्रता के ऊपर। तो इसके लिए एक और बात जो हमको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब हम कर्म करते हैं तो कर्म करते हुए निंदा, स्तुति, हानि, लाभ, मान, अपमान, प्राप्ति, अप्राप्ति, सफलता, असफलता, बहुत सारी विरोधी बातें हमारे सामने आती हैं, चाहे कोई भी हो, लौकिक दुनिया में हो या बाबा के यज्ञ में हो, और यज्ञ में भी चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बहुत पुराना हो, जब तक वो इस शरीर में है तब तक उसके सामने ये बातें आएंगी, बातों का रूप बदल जाता है। जैसे शुरू शुरू में कोई ज्ञान में चलता है तो उसको अपने लौकिक परिवार की तरफ से बातें आती हैं, फिर जैसे लौकिक परिवार से छुट्टी मिल गई, फिर यज्ञ में आएगा तो यज्ञ में संगठन के बीच में बातें आएंगी। अब मान लो संगठन में भी कोई बात नहीं है तो शरीर के हिसाब किताब के रूप में आएगी, मतलब निंदा, स्तुति, हानि, लाभ, दुख, सुख आता ही रहेगा जब तक इस कर्म क्षेत्र पर है। तो परम लक्ष्य हमारा क्या है? क्या हम ये कहें कि ये आए ही ना, ये तो लक्ष्य नहीं है हमारा, लेकिन ये आए, खूब आए, बार बार आए, लेकिन मैं इनमें रहते हुए स्थिर रहना सीख जाऊं। कोई चीज बहुत प्रिय होगी हमको, वो गुम हो जाएगी, अब स्थिति देखने की है, वास्तव में वो गुम क्यों हुई, ड्रामा में मेरी स्थिति की चेकिंग के लिए हुई है, राज है उस चीज के गुम होने का, नहीं तो मेरी स्थिति की चेकिंग कैसे हो। मैं तो कहूंगी कि मुझे तो बीती बीती करनी आती है, फुल स्टॉप लगाना आता है, नथिंग न्यू करना आता है, मेरी तो किसी चीज में अटैचमेंट ही नहीं, लेकिन पता कब पड़ता है, जब वो गुम होती है, कितना याद आई, चेकिंग हो गई ना स्थिति की, नथिंग न्यू। आज बाबा ने वरदान में बोला, नथिंग न्यू, फुल स्टॉप लगाना सीखो, जो हुआ है वो बार बार होता रहता है। या किसी ने, हमने एक्सपेक्ट किया था, किसी के सामने गए, ये हमने काम किया, ये बहुत अप्रिशिएट करेगा, लेकिन हमको तो दूसरी प्रकार की बातें सुनने को मिल गई। क्यों सुनने को मिली? मेरी स्थिति की चेकिंग के लिए। उस समय चेक करो मैं कितना पास हुआ और कितना फेल हुआ, नहीं तो कैसे चेक करेंगे अपने आप को? तो इन विरोधी बातों में कितने परसेंटेज मेरी स्थिति एकाग्र रही, ये हमको चेक करना है, चेक करके अपना रिजल्ट निकालना है। बाबा कहते हैं ना, अपना रिजल्ट निकालना आता है, परसेंटेज निकालनी आती है। तो ये परसेंटेज है, उसने कहा। और फिर मेरे आधे घंटे तक संकल्प चले, कितनी परसेंटेज निकली, उसने कहा, और केवल एक मिनट संकल्प चला। और उसने कोई बात कही और बात सुनते हुए भी मैं अशरीरी ही रहा, तो तीनों की परसेंटेज अलग अलग होगी ना। इस तरह से हमको अपनी स्थिति का जायजा लेना है, तब हमको मालूम पड़ेगा कि हम सचमुच देहातीत बने हैं, इंद्रिय जीत बने हैं, स्थिर और अचल अडोल बने हैं, आगे बढ़ रही हैं। पिछले साल यही घटना घटी तो मेरी स्थिति कैसी थी, इस साल यही घटना घटी तो देखो मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मेरी प्रोग्रेस है। प्रोग्रेस को भी कैसे मापेंगे? दुनिया में तो साल पूरा होता है तो बच्चे को अगली क्लास में भेज देते हैं, लेकिन यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई टर्निंग प्वाइंट है ही नहीं। इसके बाद भाई सबकी क्लास आगे बढ़ जाएगी, है क्या कोई टर्निंग प्वाइंट? लेकिन अपना टर्निंग प्वाइंट हमको खुद निर्धारित करना है। इस समय तक मेरी मनस्थिति ऐसी थी और उसके बाद हाई हो गई, वो मेरा टर्निंग प्वाइंट था। तो सम अवस्था कहते हैं, समतव योग उच्चते। योग क्या है? लोग दुनिया में पूछते हैं, आप योग करती हैं, योग क्या है? समाधि लगाना, घर बार छोड़ देना, जंगल में चले जाना, कर्म ना करना, योग क्या है? तो संस्कृत में एक शब्द आता है, समत्व योग उच्चते। योग का अर्थ है मन की सम अवस्था, हर परिस्थिति में मन की सम अवस्था, ये योग की परिभाषा है। तो ये स्थिति मेरी कितनी बनी? और एक बात और है जिसमें बाबा कहते हैं, बच्चे किसी से एक्सपेक्ट मत करो, कामना मत करो, किसी पर आधारित मत रहो। पुरुषार्थ के लिए अगर हम किसी पर आधारित हैं, वो ऐसा करता है तो मेरा पुरुषार्थ तीव्र हो जाता है, और उसने कितने दिनों से ऐसी किया ही नहीं तो मेरा पुरुषार्थ भी ढीला हो गया। इसका मतलब हम किसी और की बैसाखियों पे चल रहे हैं। या जब जब उसने मेरी महिमा की, मुझे बैकअप किया, तो मेरी स्थिति अच्छी हो गई, और उसने इतने दिनों से ऐसा किया ही नहीं, मैं तो ढीला हो गया। इसका मतलब हमारे पुरुषार्थ का बटन किसी और के हाथ में है। तो पुरुषार्थ में निराधार, किसी से कोई कामना नहीं, और बाबा की नियम और मर्यादा को ध्यान में रख करके अपनी आधार पे आगे बढ़ते जाना, अपने अंदर इतना सेल्फ रिस्पेक्ट निर्मित करना, आत्मसम्मान निर्मित करना, आत्मविश्वास निर्मित करना कि मुझे अपना लक्ष्य प्राप्त करना ही, एक मैं और एक भगवान। जब मुझे परम पुरुषार्थ कराने के लिए परम पिता मिल गया तो फिर मैं किसी और का मुख क्यों देखूं? तो पुरुषार्थ में किसी पर आधारित नहीं, किसी भी बात में। कोई प्रोग्राम बनेगा तो हम एक्टिव हो जाएंगे, प्रोग्राम नहीं मिला तो हम ढीले हो गए, नहीं। हमको बाबा ने अविनाशी प्रोग्राम दिया हुआ है, हमारा प्रोग्राम तो 24 घंटे का है, 12 महीने का है। जिसको आगे बढ़ना है उसके लिए 24 घंटे प्रोग्राम उसको मिला हुआ है। फिर बाबा कहते हैं, बच्चे हमारी 3 सूक्ष्म इंद्रियां हैं और 5 स्थूल कर्म इंद्रियां हैं, मन बुद्धि और संस्कार। हम कंट्रोल कहाँ से शुरू करते हैं, बाहर से या भीतर से? भीतर से शुरू करती है ना, मन बुद्धि और संस्कार। उन तीनों के ऊपर जब नियंत्रण हो गया तो बाहर वाली पांचों अपने आप नियंत्रित हो जाती है। अब जैसे मन है, मन को एकाग्र करने का बाबा ने अभी भी हमको अभ्यास करवाया था, बाबा करवाते रहते हैं ड्रिल, और मन को एकाग्र करने की बहुत सारी बातें हम सुनते रहते हैं। लेकिन इसमें भी देखने में आता है कि हम नए नए तरीके से जब पुरुषार्थ करते हैं, जैसे विज्ञान वाले नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक ही चीज से कितनी तरह की चीजें बना देते हैं, तो बाबा के एक ही ज्ञान से नए नए तरीके से अनुभव करने का जिसको शौक होता है ना, तो वो मास्टर बन जाता है अनुभूतियों में भी और मन के ऊपर भी, जैसे उसका नियंत्रण हो जाता है। तो मन को एकाग्र करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, थोड़ी थोड़ी देर में अपने आप से ये सवाल पूछना कि इस समय मैं क्या सोच रहा हूं। पहला सवाल, इस समय मैं क्या सोच रहा हूं, तो जहां हमारी बुद्धि गई होगी वो स्मृति में आएगा। जैसे कोई यहां बैठा होगा, किसी को ट्रेन पकड़नी है, 1 बजे 2 बजे, हो सकता है उसकी बुद्धि ट्रेन में जा रही हो। किसी को भोजन लेना होगा यहां से उठ करके, हो सकता है उसकी बुद्धि यात्रा भोजन की तरफ जा रही हो। तो जब आप ये सवाल पूछेंगे तो कम से कम आपको क्लैरिटी तो आएगी कि इस समय मैं कहां हूं, पहला सवाल। फिर दूसरा सवाल पूछो कि क्या इस समय ये बात सोचने की जरूरत है। तो जब आप ये सवाल पूछेंगे कि क्या इस समय ये बात सोचने की जरूरत है, तो उत्तर क्या मिलेगा, पूछेंगे तो ही तो उत्तर मिलेगा ना। तो उत्तर ये मिलेगा, जैसे मान लीजिए कोई काम हमको 2 घंटे बाद करना है, तो भीतर से उत्तर क्या आएगा कि नहीं, वो काम तो 2 घंटे के बाद करना है, तो उसके बारे में तो हम जब काम करना उससे 15 मिनट पहले सोचेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो इसका मतलब मैं 1.25 घंटे तक उसके बारे में फाइल को बंद करके रखूं, उस फाइल को बंद करके रखूं, उसको 1.25 घंटे के बाद खोलेंगे, तो फिर मैं इस समय क्या करूं। वो तो 1.25 घंटे, फिर अपने से सवाल पूछो, उत्तर आया ना, फिर सवाल पूछो, अच्छा मैं इस समय क्या करूं। तो इस समय अगर कोई आवश्यक कार्य है तो वो करूं जो करंट चाहिए, और अगर करंट नहीं चाहिए तो फिर काम मिला हुआ है ना अविनाश। करंट कोई काम नहीं है, स्टेयरिंग पर बैठी बैठी आत्मा थकती है, इसको यहां से थोड़ा फ्री करो, ढीला करो इसको, तो ये भी जरा रिलैक्स होकर के आए। आप कहीं भी इसको सूक्ष्म वतन में, परम धाम में, स्वर्ग में, कहीं भी थोड़ा इसको रिलैक्स करने के लिए भेजिए ना, यहीं बैठी रहती है, यहीं चिपकी रहती है, काम ना हो तो भी। अब मान लो ड्राइवर दिन हो रात हो, चलानी हो गाड़ी ना चलानी हो, उसी छोटी सी सीट पे जम के बैठा रहे तो उसका क्या हाल होगा, ना बाहर की हवा खाए, ना बाहर की कोई चीज देखे, क्या हाल होगा उसका। तो ये भी यहाँ फंसी ही रहती है, काम हो तो भी और ना हो तो भी, तो इसको थोड़ा सा फ्री करो। तो बार बार भीतर की ओर जाकर के अपनी एक्टिविटीज की चेकिंग करना, ये काम हमको खुद करना है, कोई दूसरा नहीं करेगा। हम बैठे हुए हैं, दूसरा तो यही समझेगा ये योग में बैठा हुआ है, ये ज्ञान सुन रहा है, ये कोई चिंतन कर रहा होगा, दूसरा तो अच्छा ही सोचेगा हमारे बारे में, लेकिन असल में हम क्या कर रहे हैं वो तो हमको ही मालूम है ना। तो मन के विचार को पकड़ करके रखो। जैसे छोटे बच्चे को घर से निकलता है तो पूछते हैं ना कहाँ जा रहा है, बोलेगा यहीं जा रहा हूं, तो भी क्या कहते, नहीं नहीं यहां कहाँ, बता के तो जा, जरूरत पड़े तो बुला तो लेंगे। तो जब मन जाता है तो उससे पूछो किधर जाना है, दिशा तो बता के जा, ताकि जरूरत पड़े तो तेरे को वापस तो बुला ले, कहीं बहुत दूर ना निकल जाए। कहाँ जा रहा है बता के जा, ये समय जाने का है कि नहीं है, ये चेकिंग तो चाहिए ना। तो मन को नियंत्रित करने के लिए बार बार मन के ऊपर पहरा, केवल सुबह नहीं, केवल मुरली के टाइम नहीं, मजा तो दिन में ही आता है इस पहरे का, क्योंकि सुबह और मुरली के टाइम तो ये इतना नहीं, थोड़ा बहुत जाता होगा, इतना नहीं जाता, लेकिन दिन में ही इसका व्यापार ज्यादा शुरू होता है। तो जब किसी सिक्योरिटी कब बढ़ाते हैं, कहते हैं भाई रात के अंधेरे में सीमा को ज्यादा क्रॉस करते हैं तो रात को सिक्योरिटी को बढ़ा दो, तो मन भी सीमा को कब पार करता है, सुबह तो इतना करता नहीं है, कारोबार नहीं है, लेकिन मुरली के बाद जैसे ही कारोबार शुरू होता है तब इसका आवागमन ज्यादा होता है, तो सिक्योरिटी भी उस समय ज्यादा चाहिए। तो वो सारा दिन कर्म करना भी और नियंत्रण में रखना भी, जिसको बाबा कहते हैं फैलाना भी आवश्यक है लेकिन सिकोड़ना भी उतना ही जरूरी है। फैलाना, फैलाए बिना काम नहीं चल सकता, विचार किए बिना काम नहीं चल सकता, विचार करना जरूरी लेकिन विचार करके वापस उसको समेट लेना उससे भी ज्यादा जरूरी। तो दोनों का अभ्यास चाहिए, ये फैलाया और ये सिकोड़ करके फुल स्टॉप लगाया, ये फैलाया और ये फुल स्टॉप लगाया, बार बार ऐसा अभ्यास चाहिए, तो हम मन के मास्टर बनेंगे। सूक्ष्म इंद्रिय ना हमारी मन, और उसके बाद बुद्धि, बुद्धि निर्णय शक्ति है, और निर्णय अच्छा कब बनता है, जब पहले परख शक्ति होती, बिना परखे जो निर्णय करता है उसका निर्णय कभी भी ठीक नहीं होता, और परखा कब जाता है किसी भी चीज को, जैसे किसी छोटी चीज को देखना होता है तो कैसे देखते हैं, बहुत ध्यान से, बहुत एकाग्र हो करके, आंखों को भी थोड़ा छोटा करके, हैं ये कैसी हैं, देखने की चीज हो तो, स्पर्श की चीज हो तो छू करके परखती हैं, सब चीजों के देखने और परखने के अलग अलग तरीके। तो परखने के लिए बहुत सूक्ष्म तरीके अपनाने पड़ते हैं, वर्णन करने के लिए स्थूल तरीके, लेकिन परखने के लिए सूक्ष्म सूक्ष्म शक्ति। बाबा कहते हैं बच्चे परखने की भी जो शक्ति आती है ना, वो तब आती है जब मन में अपने विचार ना हो। हमारे मन में अपने विचार, जिसको कहते हैं पूर्वाग्रहों के विचार, पुरानी स्मृतियों के विचार, अगर होते हैं तो हम किसी चीज को पुराने ही तरीके से देखते हैं, परखते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। लेकिन जब किसी भी चीज को परखने का मौका आए तो मन को खाली कर दो। जैसे कई बार कोई चीज देखते हैं तो ऊपर ऊपर से देख के क्या कहते हैं, हाँ ऐसी चीज तो मैंने अपने शहर में भी देखी थी, फिर कोई दूसरा कहता अरे नहीं ध्यान से देख ये अलग है, कहते ना ना अलग क्या है, वैसी तो है, क्यों कह रही है, ध्यान से नहीं देखा, परखा नहीं है, उसका मोटा रूप देख करके उसको उससे कंपैरिजन कर रही, लेकिन नजदीक जाके ध्यान से देखते हैं, पुरानी वाली बात को बुद्धि से निकाल के देखते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ नवीनता नजर आएगी। तो बुद्धि बिल्कुल खाली चाहिए, पुरानी बातों से खाली चाहिए, प्रेजुडिसेस जिसको कहते हैं, पूर्वाग्रह जिसको कहते हैं, उनसे खाली, तब हम ठीक से परखेंगे, फिर ठीक निर्णय लेंगे। इसलिए निर्णय लेने का काम बुद्धि करती है, और बाबा कहते हैं बच्चे मैं हूं बुद्धिवानों की बुद्धि, तो जो अपनी बुद्धि को मेरे से जोड़ देता है उसकी बुद्धि ठीक काम करती है। दुनिया में बहुत बुद्धिवान लोग हैं लेकिन किसी की भी बुद्धि परम बुद्धिमान परमात्मा से जुड़ी हुई नहीं है। इसलिए दुनिया में किसी का निर्णय ठीक नहीं होता, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो, चाहे कोई समाज सेवी हो, क्योंकि बुद्धि अच्छी होती तो रिजल्ट भी अच्छे निकलते, लेकिन रिजल्ट अच्छे नहीं निकल रहे। तो सही निर्णय लेने के लिए बुद्धि को परम बुद्धिमान के साथ जोड़ो। बाबा अब मैं क्या करूं, और अपने विचार अपनी वाली मत उसको वहां से खाली करो। अपनी मत होगी तो भगवान वाली मत नहीं मिलेगी, फिर हमारे निर्णय ठीक होंगे, फिर हम मन को नियंत्रित कर पाएंगे। बुद्धिमान परम बुद्धिमान से बुद्धि जुड़ेगी तो शक्तिशाली भी तो हो जाएगी ना, और शक्तिशाली बुद्धि ही मन को नियंत्रित भी करेगी और सही दिशा भी देगी। और तीसरी चीज है संस्कार। अब संस्कार बनते कैसे हैं, ये भी सूक्ष्म इंद्रिय है ना, संस्कार बनते कैसे हैं? कहते हैं बार बार किसी भी कर्म को करने से संस्कार बन जाता है, और बहुत लंबे समय तक उस कर्म को न करो तो वो संस्कार डिम होता होता मिट जाता है। जैसे एक व्यक्ति बहुत अच्छा गायक है, लेकिन 20 साल से उसने गाना छोड़ दिया है, तो क्या होगा, गाने का संस्कार डिम होते होते मिट जाएगा। एक व्यक्ति ने टाइप करना सीखा और 20 बरस तक टाइप किया ही नहीं, फिर क्या होगा, उसको आएगा ही नहीं, उंगलियां उसकी ठीक से चलेंगी ही नहीं। तो संस्कार पक्का कैसे होता है, बार बार कर्म को करने से पक्का, और जब उसको छोड़ देते हैं तो वो डिम होते होते मिट जाता है। अब मान लीजिए कोई बात हो गई, हमसे कोई गलती हो गई। अब एक तरीका तो ये है, बाबा ये गलती हो गई, मैं आगे से नहीं करूंगा, फुल स्टॉप। गलती एक ही बार हुई थी ना, और फुल स्टॉप लगा दिया, तो वो गलती करने का संस्कार क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। रियलाइज किया, फुल स्टॉप लगा दिया, याद भी नहीं किया, चिंतन में भी नहीं लाया, लेकिन एक गलती हो गई, उसके बाद बाबा मेरे से ये गलती हो गई, थोड़ी देर के बाद फिर किसी व्यक्ति को सुना रहे हैं, मैंने ना ये वाली गलती कर दी। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसको पक्का कर रहे हैं। वो कच्ची हो सकती थी, वो मिट सकती थी, फुल स्टॉप लगाया, प्रतिज्ञा की, अपने को सुधारा, बदला, सुधरने का लक्ष्य दिया, अटेंशन को बढ़ाया, भूल गए हम भी कि हमसे कोई गलती हुई थी, क्योंकि परिवर्तन कर लिया ना अपने आप का। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि दो चार को सुनाया, 20-25 बार अपने भीतर उसको बार बार याद किया, तो क्या हो गया, वो तो और पक्की हो गई। फिर जब वही मौका आएगा तो फिर हो जाएगी, फिर कहेंगे अरे भाई मेरे से तो फिर हो गई। इसलिए बाबा ने कहा था, बच्चे पश्चाताप का तरीका ये नहीं है कि आप बार बार उस चीज को याद करके उसमें दुख महसूस करो, इसमें भी विकर्म बनते, लेकिन पश्चाताप सच्चे अर्थों में ये है कि उसको फुल स्टॉप लगाया और दोबारा याद ही नहीं किया, और इतना अपने आप को परिवर्तन का एक लक्ष्य दे दिया और उस लक्ष्य में दृढ़ हो गई। पास्ट इज पास्ट। दूसरा, जैसे कोई कर्म हम रोज करते हैं तो ऑटोमेटिक हाथ पांव की क्रियाएं उस कर्म की तरफ प्रवाहित होती रहती है, जाती रहती है। जैसे कई बार क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से रोज मिलने जाता है, नियम है उसका। अब एक बार जिससे वो मिलने जाता था वो उसको कह के गया कि मैं 10 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, लेकिन फिर भी अगले दिन उसी टाइम पे वो उसके घर में पहुंच गया। क्यों पहुंच गया? क्यों पहुंच गया? संस्कार पड़ गया था। वो वाली जो बात थी कि मैं 10 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, उसकी जो लकीर थी वो तो बहुत डिम थी, लेकिन उसके घर जाने का जो टाइम था और नियम जो बना हुआ था कई वर्षों से, 2-4 वर्षों से, वो उसकी लाइन बड़ी गहरी थी, वो संस्कार बड़ा पक्का था। तो जो पक्का संस्कार होता है वो प्ले हो जाता है, बार बार करने से प्ले हो जाता है। तो ये हमारे लिए अच्छी है। मान लो हमको रोज परम धाम जाने का अभ्यास पड़ गया तो क्या हो गया? ये भी तो संस्कार बन गया ना। जब भी मैं खाली बैठता हूं, मेरी बुद्धि, मुझे पता ही नहीं पड़ता, परम धाम पहुंच जाती है, ऐसा पक्का संस्कार पड़ गया। मेहनत नहीं करनी पड़ती, पता नहीं पड़ता। जब भी मैं खाली बैठता हूं, देखता हूं मन में कोई चिंतन चल रहा है, जैसे कई भक्तों को संस्कार पड़ जाता है, ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय चलता ही रहता है, नींद में भी चलता रहता है, खाते पता नहीं उनको हम कर रहे हैं, लेकिन अभ्यास पड़ गया। तो समझो हमको किसी स्वमान का अभ्यास पड़ गया, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं दिव्य आत्मा हूं, मैं दिव्य आत्मा हूं। हमने इतना अभ्यास डाल लिया कि वो ऑटोमेटिक स्मृति में बैठा ही रहता है, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन वो अभ्यास हमारा हिलता नहीं है, इतना पक्का हो गया। तो ये भी तो संस्कार का प्लस पॉइंट है ना। तो 63 जन्म में जो नेगेटिव संस्कार बने उनको याद नहीं करना, उनको डिम करने का तरीका यही है। जैसे किसी को बहुत दिनों तक टेलीफोन ना करो तो उसका नंबर बुद्धि से खिसक जाता है, याद ही नहीं किया ना। और जिसको रोज टेलीफोन करो उसका नंबर तो उंगलियों पे रहता है। तो वो 63 जन्मों के जो संस्कार थे उनको रिकॉल किया ही नहीं, याद किया ही नहीं, वर्णन किया ही नहीं, सुनाया ही नहीं किसी को, तो वो जैसे विस्मृत हो गई। और इस वाले संस्कार का बार बार वर्णन किया, आज मैंने ऐसा अनुभव किया, किसी से बात की तो आज भले छोटी सी अनुभूति हुई लेकिन यही चर्चा की, आज मुझे इतना अच्छा अनुभव हुआ, आज मुझे फरिश्ता स्थिति का इतना अच्छा अनुभव, तो वर्णन में वही आया, लिखने में वही आया, सुनाने में वही आया, किसी से सुना तो ऐसी ही बातें सुनी, कोई सुना रहा था हमने यही सुना, तो क्या हो गया? ये जो संगम युगी संस्कार हैं, ये जो देवता बनने के संस्कार हैं, वो इतने पक्के हो गए और उनको याद ही नहीं किया, तो वो जैसे हमारी लिस्ट में से गायब हो गए। तो बार 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 करनी है। कर लिया ना एक बार, बस हो गया ना पूरा, नहीं, बार बार करना है। इसलिए बाबा कहती हैं लंबे समय का अभ्यास चाहिए। किसी चीज को मिटाने के लिए उसको फिर उतना ही ज्यादा रगड़ना पड़ता है। पहले लाइन लगाओ तो भी कई बार पेंसिल घुमानी पड़ती है, फिर मिटाओ तो भी रबड़ उतना ही ज्यादा घुमाना पड़ता है। तो हमने लगा तो लिए, लेकिन अब मिटाने भी तो हमको ही है ना, तो उतना ही पुरुषार्थ करके इन अच्छी बातों को बार बार रिपीट करना है। देखना भी वही है, जैसे बाबा ने दृष्टि वृत्ति कृति तीनों के लिए काम दिया, पहले वृत्ति, वृत्ति में शुभ भावना, अब ऑटोमेटिक चेकिंग होती रहेगी, मैं जा रहा था मैंने किसके बारे में क्या सोचा, भी अंदर जाने का अभ्यास पड़ा है ना, अरे वो एक व्यक्ति था उसको देख करके ना मन में थोड़ा सा नेगेटिव आ गया, क्यों नेगेटिव आया, चार्ट लिखो कारण क्या है, उसका फेस देख के नेगेटिव आया, उसके कपड़े देख के नेगेटिव आया, उसका व्यवहार देख के नेगेटिव आया, कोई पुरानी स्मृति देख के नेगेटिव आया, कारण ढूंढो। अच्छा अब की बार ऐसी बात आएगी तो ये नेगेटिविटी नहीं आ सकती, मैंने चेकिंग कर ली। जैसे एक बार जा रहे थे एक जगह पत्थर आया, हमने ठोकर खाई, तो मुड़ के देखते हैं ना, हाँ यहाँ निकुला पत्थर है इसलिए मैंने ठोकर खाई, अगली बार जाएंगे तो वो जगह से 10 कदम पहले ही याद आ जाएगा यहाँ एक पत्थर है, थोड़ा सा बच के जाना। तो हम अपने जीवन के रास्तों को जैसे निर्विघ्न बनाते हैं स्थूल रास्तों को, तो पुरुषार्थ के रास्तों को भी निर्विघ्न बनाना है। कौन सी बात के कारण मेरी वृत्ति बिगड़ती है उसको चेक करो, अंडरलाइन करो, उसको बार बार फिर परिवर्तन करने का लक्ष्य रखो, उसी के ऊपर संपूर्ण ध्यान दो। कौन सी घड़ी आने पर मेरी दृष्टि बिगड़ती है, बाबा ने कहा दृष्टि में क्या देखना है, ये सब आत्माएं हैं और ये आत्माएं भी जैसे स्टार हैं, जैसे इनमें से भी किरणें निकल रही हैं, सब आत्माएं स्टार हैं और इनमें से किरणें निकल रही हैं, तो वो बार बार स्मृति आई कि ये सब स्टार हैं, ये सब शिव बाबा की माइट को लेकर के माइट को आगे प्रवाहित करने वाले इंस्ट्रूमेंट, ये सब कौन है, जिसको भी देखा बच्चा बड़ा छोटा बूढ़ा, ये सब कौन है, ये सब भगवान के इंस्ट्रूमेंट है, भगवान से लाइट को लेकर के आगे देने वाले हैं। और कर्म में कर्मयोगी स्टेज, जिसको बाबा कहते हैं कर्मयोगी फरिश्ता, कर्म करते हुए भी फरिश्ता स्थिति, कर्म करेंगे तो शरीर तो आएगा ना सामने, लेकिन शरीर कैसा है। बाबा कहते हैं कर्म करते हैं तो दो बातें, एक तो फरिश्ता स्थिति और एक दाता स्टेज। सतयुग में भी हम दाता थे, मध्य काल में भी हम देवता रूप में दाता थे, और संगम युग में भी दाता के बच्चे मास्टर दाता हैं, तो हम तो सदा ही दाता हैं। और एक बहुत अच्छा स्लोगन है, जो देने वाला है वो सदा भरपूर रहता है और जो मांगता है वो सदा खाली रहता है। लोग सोचते हैं मांग करके भरपूर हो जाएंगे, लेकिन ये उल्टी फिलोसोफी है, मांग करके कोई भर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि संस्कार ही खाली रहने का है, मांगने का है, और देने वाला कभी खाली नहीं हो सकता है क्योंकि संस्कार ही भरपूर रहने का है, भरा हुआ है वो, तो उसका संस्कार ही भरा हुआ है। परम धाम में तो दाता के बिल्कुल पास बैठे हैं, वहां तो हमारी स्टेज बाप समानी है, और साकार में बाबा ने जो तीन रूप बताए उनमें भी हम दाता हैं। तो कर्म करते समय मुझे दाता स्टेज में रहना है, मेरा काम ही देना है, मुझे भगवान ने एक ही काम दिया, और तुम खाली नहीं होवोगे, ये जिम्मेवारी भगवान की है। दोगे तो भरपूर रहोगे, ये भगवान ने गारंटी ले ली, नहीं दोगे तो खाली हो जाओगे, मांगोगे तो खाली हो जाओगे, अगर देते रहोगे तो भरपूर रहोगे, ये भगवान ने जिम्मेवारी ले ली। तो कर्म चाहे कैसा भी है मुझे हमेशा चेक करना है कि मेरा हाथ ऐसे है या ऐसे है। हाथ माना बुद्धि, मैं किस अवस्था में हूं, इस अवस्था में हूं किस अवस्था में हूं, बार बार जैसे मन को चेक करना है ना, वो तो सूक्ष्म है, लेकिन ये स्थूल रूप में मेरा रूप ये वाला है सबके प्रति या ये वाला है, ये दे दो सहयोग दे दो ये दे दो, भले सहयोग की जरूरत पड़ती है लेकिन सहयोग मांगने में भी मैं किस तरीके से सहयोग मांगता हूं। ऐसे तो भगवान भी हमसे सहयोग मांगते, मेरे बच्चे मेरे सहयोगी बने, लेकिन क्या तरीका है वो सहयोग मांगने में भी दाता का देने का तरीका है। सहयोग देंगे हम बच्चे तो साथ में हमको क्या मालूम है, तुम इतना दोगे तो बदले में इतना मिलेगा, तुमको लगता है हम दे क्या रहे हैं, हम तो ले रहे हैं। वो एक बात सुनाते हैं ना कि एक बार एक भिखारी भीख मांग रहा था, तो एक देवदूत आया, तो देवदूत को देखते ही भिखारी बड़ा खुश हो गया, पता नहीं किस जन्म का मेरा भाग्य खुला, पुण्य उदय हुआ, ये देवदूत आया है, मैं इससे कुछ ना कुछ मांगूंगा और ऐसा मांगूंगा कि भरपूर हो जाऊंगा। तो जैसे जैसे वो नजदीक आता गया और जैसे ही भिखारी उससे कुछ मांगे, इससे पहले देवदूत ने ही मांग लिया, बोला तू मुझे कुछ भेंट देगा। उसने कहा अरे ये तो उल्टा हो गया, मैं तो इससे मांगने वाला था, ये तो देवदूत है और ये मेरे से मांग रहा, अब क्या करूं, बड़ी देर से देख रहा था आ रहा आ रहा आ रहा। तो उसके हाथ में भीख का कटोरा था और उसमें से उसने एक दाना उठा करके उसके हाथ में रख दिया, देवदूत दाना लेके चला गया। वो घर में आ गया, बड़ी चिंता में था ये भगवान, बड़ी मुश्किल से कोई देवदूत आया और देने के बजाय मेरे से ले गया, देने के बजाय मेरे से ले गया, एक दाना मेरा कम हो गया। और अगले दिन सुबह उठ करके जब उसने पात्र देखा तो वो एक दाना सोने का बना हुआ था। पहले उसको वो दाना देने का दुख था, एक दाना मेरा कम हो गया, और जब वो दाना सोने का बन गया तो बाकी दाने ना देने का दुख है। अगर मैं सारे दे देता तो कितना अच्छा होता, अब दुख है कि मैंने दिए क्यों नहीं। तो भगवान ने सहयोग लिया, पर सहयोग के बदले में दाने को सोने का बना करके, ये तो दाना सोने का बना, भगवान तो पूरी दुनिया ही सोने की बना के हमको दे देता है। तो सहयोग हम लेते हैं तो भी इस भावना से कि जो सहयोग दे रहा है वो भी मालामाल हो जाए, वो खाली ना हो, वो भी भरपूर हो जाए। तो इस तरह से जब सहयोग मांगते हैं तो वो लेना लेना नहीं होता है, लेकिन वो भी देना होता है। और जब इंद्रिय जीते हैं, देहातीत हैं, तो प्रकृति जीत तो बन ही जाएंगे। फिर ये प्रकृति हमको बांधेगी थोड़ी, चाहे भीतर की प्रकृति और चाहे बाहर की प्रकृति, चाहे शरीर रूपी प्रकृति और चाहे हमारे चारों ओर तत्वों रूपी प्रकृति। अभी जैसे ठंडी है, कई भाई बहन कहते हैं ठंडी बहुत है, तो मैं तो हंसी हंसी में कहती हूँ कि लोग एसी लगा करके ऐसी ठंडी क्रिएट करते हैं, कितना खर्चा होता है उसमें। और ये भगवान ने तो नहीं, प्रकृति ने नेचुरल एसी लगा दिया है, तो इसका भी आनंद लो, इतना पूरा शांतिवनी एसी हो गया है। तो जो भी प्रकृति का परिवर्तन होता है उसको भी एक्सेप्ट करते, उसको भी इंजॉय करते हैं। गर्मी आती है उसको भी इंजॉय करती है, बरसात को भी, सर्दी को भी, बीमारी आती है उसको भी इंजॉय करते हैं। क्यों? क्योंकि जो बीमारी है वो जैसे अर्धवार्षिक परीक्षाएं या त्रिमासिक परीक्षाएं होती हैं, तो उस प्रकार की चीज है वो भी, अवस्था को चेक करने का तरीका है। पिछली बार बीमार हुआ तो कैसी स्थिति थी, इस बार हुआ तो कुछ सुधार हुआ कि नहीं हुआ, कि वैसी ही अंदर में वैसे ही आत्मा कुलमुला रही है, या पिछली बार हुआ तो शरीर पर नियंत्रण नहीं था, इस बार आया तो नियंत्रण हो गया, इस बार पता ही नहीं पड़ा कब आई और कब गई। इसका मतलब पिछली बार परीक्षा में नंबर कम आए थे, इस बार की परीक्षा में नंबर अच्छे आए, और अगर अगली बार आएगी तो 100% मार्क्स लेंगे, सेवा भी करेंगे और शरीर से डिटैच भी रहेंगे भले बीमारी भी हो। तो हमें अपनी अवस्था की चेकिंग का मौका मिलता है, इसलिए कोई भी ब्राह्मण ऐसा नहीं है जो इस पेपर से छुटा हुआ हो। जैसे 6 महीने वाले पेपर सबको देने पड़ते हैं ना, 3 महीने वाले पेपर सबको देने पड़ते हैं ना, तो ऐसे ये वाला पेपर भी सबको देना पड़ता है, कोई बच नहीं सकता इससे। इसलिए पहले से ही समझ लें, शरीर है तो इसमें कुछ ना कुछ तो आएगा ही, पर मेरा जो लक्ष्य है वो है इसको पूरा पास करना। ओम शांति।
मेरे बाबा। समय के ये जीवन हमारा, कर्मों में देखे तुझको ये जग सारा। तेरी प्यारी पलकों में हर पल ही पल्ला, मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा।
मेरे बाबा।